بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج ہم آپ کے لئے کتاب برمودا تکون اور دجال ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 ہے. اس کتاب کے مصنف مولانا عاصم عمر ہیں. یہ آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225. رابرٹ 70 یا 100 آدمیوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. ان میں سے اکثر تو وقتی طور پر اپنے حواس ہی کھو بیٹھے تھے. ہر شخص اس قدر مبہوت ہو چکا تھا کہ کسی کو فوٹو کھینچنے کا خیال تک نہیں آیا. چارلٹس ورلڈ، اصل چاند کہاں تھا؟ رابرٹ، آسمان پر. آسمان بالکل صاف تھا. ہم نے جو کچھ دیکھا وہ چاند ہرگز نہیں تھا. چارلز برڈ، کیا تمہارے خیال میں اس واقعے کی رپورٹ کی گئی تھی؟ رابرٹ، یقیناً اس واقعے کو لاگ بک جہاز میں موجود یادداشت لکھنے کی ڈائری میں درج کیا گیا. لیکن جب ہم نارفوک پہنچے تو چند افسران عرصے پر آئے اور جہاز کی لاگ بک اپنے ساتھ لے گئے. اب جو لاگ بک میں نے دیکھی اس میں صرف راستے کی تبدیلی کا ذکر تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا. چارلز برلز، کیا اس کے بارے میں کچھ اور بھی کہا گیا تھا؟ رابرٹ، جی ہاں، اگلے روز ہم نارفورک پہنچے. ہر شخص اس واقعے کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہمارے کپتان نے ہمیں ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ ہم اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہ کریں. یہ واقعہ لائٹ گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر نامی جہاز پر مامور راڈار آپریشنل انٹیلیجنس رابرٹ پی ریلے کا تھا، جس کا انٹرویو برمودا تکون پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلز برلز نے اپنی کتاب دی برمودا ٹرائنگل میں نقل کیا ہے. 10 اکتوبر 1973 کو یو ایس کوسٹ گارڈ کٹر جب گوانتانامو کیوبا کی جانب سفر کر رہا تھا تو اس کے عرشے پر نگران عملے نے بڑے واضح طور پر 5 اڑن تشتریوں کو وی کی شکل میں جہاز کی حدود اور اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے ہر ایک تشتری وی کی شکل کی تھی، جن کی پرواز بہت تیز تھی اور جہاز کی طرف آتے اور دور جاتے ہوئے ان کے رنگ کبھی سرخ اور کبھی نارنجی رنگ میں بدل رہے تھے. یہ وی انگریزی حرف وی کی شکل کا ہے. 11 اپریل 1963 کو بوئنگ 707 کے پائلٹ اور انجینئر نے دیکھا. وہ سان جوان سے نیو یارک کی طرف پرواز کر رہے تھے کہ برمودا تکون کے علاقے میں سمندر سے گوبھی کے پھول کے مانند پانی کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. ایک اور محقق بلی بوت اپنے مقالے اڑن تشتریاں برمودا تکون میں یو ایف او ان دا برمودا ٹرائنگل لکھتے ہیں. مجھے امریکی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جان ایف کینیڈی پر موجود عملے کے ایک شخص نے بتایا کہ وہ 1971 میں امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس جان ایف کینیڈی پر نارفوک ورجینیا سے واپس آ رہا تھا. وہ اس جہاز پر مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر تھا. تبھی مواصلات کے کمرے میں موجود تبھی لوگوں نے کسی کو چیختے ہوئے سنا، جہاز کے اوپر کوئی چیز منڈلا رہی ہے. تھوڑی ہی دیر بعد کوئی اور چلایا، دنیا فنا ہونے والی ہے. یہ سن کر ہمارے کمرے سے 6 آدمی اوپر کی طرف دوڑے. انہوں نے اوپر نظر ڈالی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گئے. ان کے اوپر ایک بہت بڑا کڑا گھوم رہا تھا. یہ اڑن تشتری تھی. اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی जो पीली से नारंगी रंग में तब्दील हो जाती थी। ये तकरीबन 20 सेकंड तक जहाज के ऊपर रही। इस दौरान जहाज के कंपास, राडार और दीगर आलात मुअत्तल रहे। जहाज पर मौजूद F-4 फैंटम तैयारे स्टार्ट नहीं हो सके। चंद दिन बाद जब जहाज नारफोक के करीब पहुंचा, तो एक कैप्टन और इसमें कैप्टन आया और उसने तंबीह की कि जो कुछ जहाज पर आप लोग उन्हें देखा है, वो जहाज तक ही महदूद रहना चाहिए। मयामी फ्लोरिडा के एक माहिर मल्ला डोन डलमोइने को 2 बार इनका सामना कर चुके हैं। इनके मुताबिक अक्टूबर 1969 में वो समंदर में थे कि थोड़े से फासले पर ही उन्हें बड़ी तेजी के साथ कोई आबदोज नुमा चीज आती हुई दिखाई दी। यह आबदोज नहीं थी, उसका रंग सुरमई था और उसकी लंबाई 150 से 200 फुट तक थी। वो ठीक उसकी सिमत ही आ रही थी और टकराव यकीनी था। डॉन डोलमेनी को कहते हैं कि मैंने मोटर बंद की और बस दुआएं मांगने लगा। फिर मैं हैरान रह गया कि वो आबदोज नुमा चीज मेरी कश्ती के नीचे से गोता लगाकर अपनी राह चलती दूर नीले पानियों में गायब हो गई। बरमूडा तिकोन के पानी के अंदर गोताखोरों ने बारहा सफेद चमकदार अजीब किस्म की सवारियां देखी हैं जो बहुत तेजी के साथ सफर करती हैं। उनका ख्याल है कि ये वही उड़न दश्तरियां हैं जिनको पानी से निकलते और दाखिल होते देखा जाता रहा है। उड़न दश्तरियां, आजादी सहाफत कहाँ है? अमेरिका की जहनी गुलामी में मुब्तिला लोग वहां की इंसानी आजादी और आजादी सहाफत की तारीफें करते नहीं थकते। ये ख्याल महज मरऊबियत है, वरना वो भी जानते हैं कि अमेरिका में सिर्फ उन्हीं उमूर पर लिखने और बोलने की आजादी है जिससे वहां की खुफिया कुवतों के मफादात पर जर्ब ना पड़ती हो। लेकिन ऐसा कोई भी मसला जिसको वो जाहिर करना ना चाहते हों, इस बारे में अमरीकी सदर को भी मुंह बंद रखने पर मजबूर कर देते हैं। बरमूडा तिकोन और उड़न तश्तरियों के बारे में सैकड़ों तहकीकी टीमें बनाई गईं, तहकीकात हुई, लेकिन रिपोर्ट कभी मंजरे आम पर नहीं आने दी गई। तमाम रिपोर्टें फाइलों में बंद पड़ी रह गईं। अगर किसी ने बात ना मानकर अपनी तहकीक को जारी रखा तो उसको जान से ही हाथ धोना पड़ा। इब्तदा में उड़न दश्तरियों की हकीकत को छुपाने के लिए खुफिया कुवतों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि उड़न दश्तरी देखने की गवाही देने वाले वहमी हैं। लेकिन जब व्हाइट हाउस के ऊपर बैक वक्त 20 उड़न दश्तरियां नजर आईं, तब तो अब एक और बहाना बनाया गया। लोगों को ये बताया गया कि ये किसी और सैयारे की मखलूक है जो पिकनिक मनाने हमारी जमीन पर आ जाती है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये किसी और सैयारे की मखलूक है तो उनके बारे में तहकीक करने वालों को मौत की नींद क्यों सुला दिया गया। चुनाचा गैर जानिबदार मुहक्किकीन को इस बात का यकीन है कि इनके बारे में ऐसा कुछ जरूर है जिसको अमरीका में मौजूद इंतहाई ताकतवर लेकिन खुफिया खुफिया हाथ दुनिया वालों से पोशीदा रखना चाहते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर जयसूफ को, जो उड़न तश्तरियों और बरमूडा तिकोन की हकीकत तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर जयसूब अपने इन नजरियात के बारे में डॉक्टर वैलेंटाइन से गुफ्तगू करने जा रहे थे, लेकिन इनको रास्ते में ही मार दिया गया। इनकी कार के एग्जॉस्ट से फ्यूज मुंसलिक करके कार के अंदर ले जाया गया था, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार के अंदर भर गई थी। डॉक्टर वैलेंटाइन के बयान के मुताबिक जिस वक्त पुलिस डॉक्टर जयसूफ की कार के पास पहुंची, उस वक्त डॉक्टर जिंदा थे। इसका मतलब है कि इनको मर जाने दिया गया। इनके नजरियात बहुत एडवांस थे और ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें इन नजरियात का लोगों के सामने आना पसंद नहीं था। इसके बाद डॉक्टर जयसूफ के तहकीकी सिलसिले को एक और बड़े साइंसदान जेम्स ई मैकडोनल्ड ने आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 13 जून 1971 को उसके सर में गोली मारकर उसको भी खलाव से पार पहुंचा दिया गया। सरकारी ऐलान वही था कि उसने खुदकुशी की है। इसी जुर्म की पाداش में एक और साइंसदान रॉब पामर को जिंदा ही बहरे अहमर में डुबो दिया गया। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर वादे के मुताबिक इस बारे में कोई तहकीक नहीं करा सके। बरतानिया और अमेरिका में कई वजीर आजम और सुदूर अपनी इंतखाबी मुहिमों के दौरान अपने वोटरों से ये वादा कर चुके थे कि वो इलेक्शन में कामयाब होकर इन तमाम रिपोर्टों को मंजर आम पर लाएंगे जो उड़न दश्तरियों से मुतालिक फाइलों में बंद पड़ी हैं। मौजूदा अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी उन्हीं वादा करने वालों में शामिल हैं। गौर करने की बात यह है कि अगर ये उड़न तश्तरियां खलाई मखलूक की मिल्कियत हैं, तो इसके बारे में रिपोर्ट शाया करने में अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम को क्या चीज रोक रही है? और तहकीक करने वालों को कत्ल क्यों करा दिया जाता है? उड़न तश्तरियों में सफर करने वाले आम इंसान हैं जिन मुहक्किकीन ने गैर जानबदारी के साथ बरमूदा तिकोन पर तहकीकी काम किया है, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उड़न तश्तरियों वाले कोई खलाई मखलूक नहीं। जैसा कि उनके बारे में ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही है, बल्कि हमारी इसी दुनिया के इंसान हैं। अलबत्ता वो अपने हुलिये, अपने लिबास और अपनी चाल ढाल से ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि खलाई मखलूक हैं। उनका जिस्म हमारे जिस्म की तरह है, नाक, कान, मुंह, आंखें, हाथ, पांव और दीगर तमाम अज़ा भी आम इंसानों की तरह ही हैं। इसकी दलील में बहुत सारे वाकयात हैं जिनकी तफसील में ना जाते हुए सिर्फ इतना समझना काफी है कि उड़न तश्तरी वालों के जरिए जिन अफराद को अगवा किया जाता रहा है, उनके बयान के मुताबिक अगवा करने वाले हमारी तरह इंसान ही हैं। अलबत्ता वो हर जबान में बात कर सकते हैं। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी इस बारे में यही नजरिया शायद इल्म यकीन है। हफ्त रोजा अल असबू अल अरबी ने 29 जनवरी 1979 के शुमारे में लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक बिला शक्को तरदीब उड़न तश्तरियां मौजूद हैं और ये उड़न तश्तरियां जिन हाथों के कंट्रोल में हैं, वो भी इंसान ही हैं। बहावाला बरमूडा ट्रायंगल मुसन्निफ राजपूत इकबाल अहमद। जो उड़न तश्तरियां हादसात का शिकार हुई, इनमें से मिलने वाली लाशें इंसानों की थीं। अगर ये इंसान ही हैं, तो इनका बादशाह या मालिक कौन है? इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी और बेपना खुफिया कमीन गाहों में बैठकर वो किसके खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं? अमरीकी सदर आइजन हावर से उन्होंने मुलाकात की। दीगर अमरीकी सुदूर उनके बारे में रिपोर्टें शाया क्यों नहीं करते? इन सब बातों से ये समझ आता है कि इनकी हकीकत के बारे में इस यहूदी लॉबी को अच्छी तरह इल्म है जो अमेरिका और बरतानिया समेत इस वक्त तमाम दुनिया पर काबिज है। चनाचा उड़न तश्तरी वाले, ख्वाह वो जो भी हों, इस यहूदी लॉबी से ज्यादा ताकतवर हैं। वो कौन हैं जो हमारी इस मालूम दुनिया की टेक्नोलॉजी से कई सदियां आगे हैं? फजाओं, खलाओं, खुश्क उतर में अगर उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, तो दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया उनके पास कैसे होंगी? आइए आगे बढ़ने से पहले जरा उनकी जिंदगी के बारे में तसव्वुर करते चलें। इन बातों की रोशनी में अगर देखा जाए कि बरमूडा तिकोन वालों के पास इसके अलावा दीगर शोबों में जो टेक्नोलॉजी होगी, वो इस वक्त कितनी तरक्की याफ्ता होगी। मसलन नंबर 1, मेडिकल के शोबे। जैसा कि पहले बाज अगवा कुनिंदगान के हवाले से ये बताया जा चुका है कि उड़न तश्तरी वालों से मुलाकात के बाद उनमें हैरत अंगेज तब्दीली पैदा हुई। नेस फादर फ्रेक्सिडो के बयान के मुताबिक दायमी और पैदाइशी मरीजों का सेहत याब हो जाना इस बात से इस शोबे में उनकी तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दायमी और पैदाइशी मरीजों का कामयाब इलाज कर सकते हैं। जिसे देखकर कमजोर ईमान वाले उन्हें शायद खुदा समझ बैठे। नंबर 2, खेती बाड़ी। लेजर शुआओं के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। इस वक्त की टेक्नोलॉजी में इसको जदीद तरीन समझा जा रहा है। लेजर शुआओं के इस्तेमाल पर अगर कोई कुव्वत उबूर हासिल कर चुकी है, तो वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे सकती है कि लोग इसको मौजजा समझकर उसकी ताकत पर ईमान ला बैठेंगे। लेजर शुआओं के जरिए बड़े से बड़े सरसब्ज खेतों को मिनटों में सुखाकर बंजर बनाया जा सकता है। बंजर जमीन को लहलहाते हरे भरे खेत में तब्दील किया जा सकता है। आसानी के लिए इसको तफसील से समझते चलिए। आप टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ देखते हैं, ये सिर्फ शुआएं ही होती हैं, जो मुख्तलिफ जानदार और बेजान मनाजिर की शक्ल में आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होती हैं। इन मनाजिर को देखने के लिए अभी आप एक स्क्रीन के मोहताज हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये सब कुछ देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी। लेजर शुआएं बराह रास्त किसी भी जगह मार कर ये सब कुछ देखा जा सकेगा, हत्ता के फजा में भी। यानी आप देखेंगे कि किसी चौक पर कंपनी का इश्तहार आपको हरकत करता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन साइन बोर्ड के बगैर। इश्तहार के लिए साइन बोर्ड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बराह रास्त फजा में लेजर शुआओं से वही मंजर बना दिया जाएगा जो साइन बोर्ड पर लिखाया जाना था। इसी तरह टीवी स्क्रीन के बगैर वो सब कुछ फजा में ही दिखा दिया जाएगा जो टीवी स्क्रीन पर नजर आता है। चुनाचा अगर किसी बंजर जमीन पर लेजर शुआएं डालकर सरसब्ज खेत का मंजर दिखाना चाहें तो दिखाया जा सकता है। इसी तरह इन शुआओं के जरिए बड़ी बड़ी इमारतों को गायब कर देना, जमीन और समंदर में जलजले पैदा करना, इंसान के दो टुकड़े करके लोगों को दिखाना, यानी बाज चीजों में हकीकी तबाही और अक्सर में नजरबंदी का काम लेजर शुआओं से लिया जा सकता है। इस वक्त अमेरिका के पास लेजर गाइडेड मिसाइल, तैयारों और मिसाइलों को तबाह करने वाली लेजर शुआएं हैं, लेकिन इब्तदाई मरहले में। तो क्या आपका जहन इस बात को तस्लीम करेगा कि बरमूडा त्रिकोण वाले लेजर शुआओं पर उबूर हासिल कर चुके हैं? नंबर 3, मवासलात का निजाम। उड़न तश्तरियों के बारे में आपने पढ़ा कि उनके जाहिर होने से दुनिया का जदीद मवासलाती निजाम ठप होकर रह जाता है। हजारों किलोमीटर दूर से सैटेलाइट की फिल्मों को साफ करने की सलाहियत इनमें है। जरा तसव्वुर कीजिए कि इस मैदान में वो कितने आगे होंगे। दुनिया के तमाम ईमेल, फोन कॉल्स, एसएमएस क्या पहले उनके पास जाते हैं? इंटरनेट निजाम के बारे में अहले फन के यहाँ ये मशहूर है कि ये सारा निज़ाम पेंटागोन से कंट्रोल होता है। उसका मेन सर्वर पेंटागोन है। शायद ऐसा नहीं है, बल्कि बरमूडा वालों की टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये सारा निज़ाम उनके सामने इसी तरह है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने है। क्योंकि ये सारा निज़ाम सैटेलाइट से चल रहा है। सैटेलाइट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि बरमूडा के अंदर बैठे बैठे वो किस तरह सैटेलाइट के डेटा को कंट्रोल कर लेते हैं। कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से मुंसलिक होने के बाद क्या उनकी नजरों से बचा रह सकता है? नादरा, ऑनलाइन बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग, जगह जगह लगे सिक्योरिटी कैमरे, ये सब मालूमात बरमूडा की खिड़कियों, विंडोज से इन्हीं कुव्वतों के पास तो नहीं जाती। और ये जो विंडोज आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा ये किसकी खिड़कियां विंडोज हैं? ये खिड़कियां आपके लिए हैं, ये बरमूडा वालों के लिए, जिनसे वो सारी दुनिया को झांक रहे हैं। बाजार में ऐसे जदीद लैपटॉप दस्तयाब हैं जो हर वक्त इंटरनेट से मुंसलिक रहते हैं। आप इसमें जितना भी डेटा रखना चाहें रख सकते हैं, लाखों गेगा या करोड़ गेगा, लेकिन इनमें हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि आप जो कुछ भी अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो मेन सर्वर में मौजूद है। आप जब भी चाहें अपना डेटा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब तक मेन सर्वर वाले चाहें। फिक्र कीजिए, ये तरक्की है या तनजुली, ये भरोसेमंद चीज है या अचानक सब कुछ गायब कर देने वाली। लेकिन वो है कौन? बरमूडा तिकोन के बारे में अब ये सवाल बाकी रह जाता है कि ये कौन लोग हैं और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी इन कुव्वतों ने किससे जंग करने के लिए बनाई है और उनके मकासद क्या हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में खैर और शर की कुव्वतें पाई जाती हैं और इस वक्त खैर और शर और हक और बातिल के दरमियान मार का फैसला कुन मराहिल से गुजर रहा है। चुनाचा हमें ये जहन नशीन रखना चाहिए कि बरमूडा तिकोन में मौजूद कुव्वतें यकीनन शर से ताल्लुक रखती हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि ये तमाम तैयारी दुनिया से हक को ख़त्म करके बातिल की हुकूमत कायम करके सच को मिटाकर झूठ का राज कायम करने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से हटाकर झूठे खुदा और इब्लीस की परवरदा काने दज्जाल की खुदाई के सामने दुनिया को झुकाने के लिए की जा रही है। जिस किस्म के वाकयात बरमूडा तिकोन और उड़न तश्करियों के सिलसिले में सुनने में आते रहते हैं, अगर अहादीस नबवी की रोशनी में उनका तज्जिया किया जाए तो एक मुसलमान का जहन फौरन इस फितने अजीम की तरफ जाना चाहिए जो तारीख इंसानी का सबसे खतरनाक फितना होगा, जिस फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को बार बार डराया। ये फितना दज्जाल है जिसको याद करके सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम रोने लगते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फिक्रमंद रहते थे कि मदीना मुनव्वरा में एक लड़का इब्ने सैयाद की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली जिसमें दज्जाल की निशानियां पाई जाती थीं, तो आप खुद उसके घर तशरीफ ले जाते और छुप छुप कर उसके बारे में तहकीकात करते थे। आज क्या वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सच्चा मानने वाली उम्मत अपने गिर्दोबेश के तमाम खतरात से बेनियाज नामालूम सिमतों में भटकती फिर रही है। होना तो ये चाहिए था कि उड़न तश्तरियों और बरमूडा तिकोन के वाकयात की भनक लगते ही संजीदगी से इस मौजू की तरफ तवज्जा करते, लेकिन लगता यूं है कि दज्जाल के निकलने का वक्त करीब है कि उल्मा ने भी इसका तस्करा मिंबरों मेहराब से करना छोड़ दिया है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इब्ने सयाद के बारे में था कि दज्जाल की कुछ निशानियों की वजह से उसके बारे में खुद जाकर तहकीकात फरमाते थे, तो हमें भी बरमूडा तिकोन और उड़न तश्तरियों के बारे में यही तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ज़बान मुबारक से जो निशानियाँ दज्जाल के बारे में बयान फरमाई गई है वो बरमूडा तिकोन और उड़न तश्तरियों वालों में पाई तो नहीं जा रही। क्या उड़न तश्तरियां काने दज्जाल की मिल्कियत हैं? दुनिया में जारी हक व बातिल के माबैन जारी इस जंग में एक फरीक होने की हैसियत से मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि बरमूडा तिकोन में मौजूद इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल कुव्वत कौन है। सारी दुनिया में जारी कुफ्र और इस्लाम की इस लड़ाई फैसला कुन लड़ाई में ये क़वत किसके साथ है? स्पेन के तज्जिया निगार उड़न तश्तरियों को शैतानी मज़ाहिर कहते हैं। एक रोमन कैथोलिक पादरी फादर फ्रेक्सीडो जो उड़न तश्तरियों के बारे में सनद समझे जाते हैं कहते हैं ये सब शैतानी चरखा है। चर्च और हमारे अजदाद जिनको शैतान कहते हैं वो अब उड़न तश्तरियों के हवाबाज कहलाते हैं। उड़न तश्तरियों के शाहिदीन उनकी परवाज के वक्त अक्सर सल्फर की बू महसूस करते हैं। ये शैतान को मारे जाने वाले गंधक के पत्थरों की बू है। फादर फ्रेक्सीडो के कुछ और भी नजरियात हैं। उनका मानना है कि जब जब ये उड़न तश्तरियाँ कैरेबियन समंदर पर जाहिर हुई मकामी तौर पर मौजजात का जहूर होता रहा है। मसलन गिरजाघर के मुजस्मे रोने लगते या उनके मुंह से खून बहने लगता, तस्वीरें रोशन हो जाती, चर्च के टावर से रोशनी की किरणें निकलने लगती, इनफरादी तौर पर दायमी मरीज सेहतमंद हो जाते। उड़न तश्तरियों के जाहिर होने के वक्त दायमी मरीजों के सेहतमंद होने के वाकयात कसरत से नमूदार हुए हैं, खसूसन वो अफराद जिनसे उड़न तश्तरी वालों ने मुलाकात भी की हो, उनमें हैरत अंगेज तौर पर जिस्मानी और जहनी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। फादर फ्रेक्सिडो के बयान की तस्दीक उनके तलबा के अगवा से भी होती है जिनको अलागाश के जंगल से अगवा किया गया था। इनमें से एक तालिब इल्म में हैरतअंगेज जहनी सलाहियत पैदा हो गई थी। अमेरिका के इंतहाई अहम लोग, खुसूसन बड़े बड़े यहूदी बैंकरों और पेंटागन में मौजूद यहूदी जर्नेलों को यकीनन इस हकीकत का इल्म है जो बरमूदा के अंदर है और उनका वहां से मुस्तकिल रबता भी है। ऐसा ही ख्याल फ्लाइट 19, जिसमें 5 तैयारे एक साथ गायब हुए थे, में मौजूद कैप्टन पावर्स की बेवा जॉन पावर्स के भी हैं। वो कहती हैं, इन लोगों ने बरमूदा तिकोन में यकीनन कोई चीज देख ली थी, कोई ऐसी हैरत अंगेज और पुरिसरार चीज देख ली थी जिसने उनके तमाम आलात को नाकारा कर दिया था। कोई ऐसी चीज जिसने लेफ्टिनेंट टेलर को इतना खौफजदा कर दिया था कि उसने किसी को अपना ताकुब करने और अपनी जान खतरे में डालने से मना कर दिया था। कोई ऐसी चीज है जिसको कौमी सलामती की खातिर अमरीकी बहरिया अवामुन्नास से छुपाना चाहती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि गायब होने वाले तमाम अफराद कहाँ गए, क्योंकि मैं इनसे राबते में हूँ। सिर्फ यही नहीं कि मैंने इन तमाम हादसात को देखा है, बल्कि इन गायब होने वालों में से बाद से मैंने बात भी की है। अगरचे इन सब का वापस आना और लोगों के सामने जाहिर होना नामुमकिन है कि वो सब इसी दुनिया में कहीं मौजूद हैं। मैंने एक तैयारे के पायलट से बात की है जो 1945 में गायब हो गया था। गायब होने के बाद से उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जिस वक्त ये पायलट बरमूडा में गायब हुआ, उस वक्त उसकी उम्र 50 साल थी, जबकि मैंने उससे मुलाकात 1969 में की। वो जिंदा था, लेकिन कहाँ? जमीन के अंदर ही कहीं। ये दावा एड स्नेडकर नामी एक साइंसदान का है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एड स्नेडकर का दावा बेबुनियाद है या फिर मामला कुछ यूं है कि कुछ खास लोगों को इस बात का इल्म है कि बरमूडा की गहराइयों में अगवा कर लिए जाने वाले अफराद कहाँ हैं। तो क्या वो लोग बरमूडा के पानी के अंदर मौजूद खुफिया कुवतों के बारे में भी इल्म रखते हैं? मोहम्मद ईसा दाऊद मिस्री मुहक्किक हैं। उड़नतश्तरियों और बरमूडा तिकोन पर उनकी तहकीक बहुत गहरी है। इनके नजदीक उड़नतश्तरियां दज्जाल की मिल्कियत और उसकी इजाद हैं। नेज बरमूडा तिकोन के अंदर उसने इब्लीस की मदद से तिकोन की शक्ल का किला नुमा महल बनाया हुआ है। बरमूडा तिकोन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तामीरात गोताखोरों ने देखी हैं, जहां से बैठकर वो अपने चेलों को हिदायत दे रहा है और अपने निकलने के वक्त का इंतजार कर रहा है। इस पूरे मिशन में इसको इब्लीस और इसके तमाम शयातीन की मदद हासिल है, जो तमाम दुनिया के अंदर सियासी, इक्तसादी, सामाजिक और अस्करी मैदानों में जारी है। किस मुल्क में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, किसको कितनी माली इमदाद देनी चाहिए, किस मुल्क में अपनी फौज उतारनी चाहिए और किस मुल्क को तबाह करना है। नेज दुनिया में जारी दरियाओं पर, खुसूसन मुस्लिम दुनिया में, कहाँ कहाँ डैम बनाने हैं, अपने हामी मसलक वाली अकवाम को इख्तदार में लाना है और हर इस कौम और फर्द को अभी से रास्ते से हटाना है जो आगे चलकर दज्जाल के सामने खड़ा हो सके। जहां तक बरमूडा तिकोन में इब्लीस के मरकज का ताल्लुक है, इस पर कोई एतराज नहीं। अलबत्ता दज्जाल की वहां मौजूदगी पर एतराज हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को मशरिक में बयान फरमाया था, जबकि बरमूडा तिकोन मगरिब में है। इसका जवाब ईसा दाऊद ये देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद दज्जाल इस तरह बंधा हुआ नहीं रहा जिस तरह हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको बंधा हुआ देखा था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद वो जंजीरों से आजाद हो गया था और मुस्तकिल अपने खुरूज के लिए राह हमवार करता रहा है। अलबत्ता इसको मुकम्मल आजादी उसी वक्त मिलेगी जब वो दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करेगा। ये भी हो सकता है कि बरमूडा तिकोन में इबलीस हो और दज्जाल जापान के शैतानी समंदर में या ईरान के इस्फहान में ही हो। और इस तरह दोनों का आपस में रابطہ हो और दोनों जगहों से इस्लाम के खिलाफ पूरी इंसानियत के खिलाफ साजिश की जा रही हो। वाज रहे कि जापान का शैतानी समंदर मशरक में ही है। क्या दज्जाल जंजीरों से आजाद हो चुका? दज्जाल के खुरूज तक जंजीरों में जकड़े रहने का जहां तक ताल्लुक है, तो इस बारे में कोई हदीस नहीं मिल सकी। अलबत्ता सही हदीस से ये बात साबित है कि दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं होगा। वाज़ह रहे कि दज्जाल के खुरूज से मुराद उसका खुदाई का ऐलान करना है। इसकी तफसील आगे आ रही है। बल्कि आजाद और मुतहर्रिक होगा और उसके पास कुव्वत भी होगी। मीडिया के जरिए इसकी शख्सियत को एक मुसलह रिफॉर्मर और अजीम रहनुमा के तौर पर लोगों में उसकी शोहरत होगी। सही हदीस से साबित है कि वो पहले नबुवत का दावा करेगा। नबुवत का दावा वही शख्स कर सकता है कि जिसके कुछ पैरोकार मौजूद हों और वो आजाद हो। किसी नामालूम जजीरे में जंजीरों में जकड़ा शख्स नबुवत का दावा किसके सामने करेगा और किसको अपनी नबुवत पर कायल करेगा? इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में दज्जाल के बारे में तवील हदीस नकल की है, जिसका एक हिस्सा ये है। तर्जुमा: बेशक वो दज्जाल उस रास्ते से निकलेगा जो इराक और शाम के दरमियान है, सो वो दाएं बाएं बहुत फसाद फैलाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहो। पहले वो ये कहेगा कि मैं नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर वो और दावे करेगा, यहाँ तक कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम मरने से पहले अपने रब को हरगिज नहीं देख सकते। ये हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है। हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको मुस्लिम के दर्जे की हदीस माना है। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि वो खुदाई के ऐलान से पहले आजाद होगा। इसके अलावा एक और सही हदीस भी इस बात को साबित कर रही है कि दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले दुनिया के तमाम हालात से बाखबर होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा। सही इब्ने हबान, मसनद अहमद, मुहक्किक शुएब अल अरनूत ने इसको मुस्लिम के दर्जे की हदीस करार दिया है। अगर दज्जाल को किसी जजीरे में इसी हालत में जंजीरों में जकड़ा हुआ तस्वुर किया जाए कि किसी को इसका पता ही ना हो और ना इसको दुनिया के हालात का इल्म, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब होगा? जब उसे कुछ खबर ही ना होगी तो वो गुस्सा किस पर होगा? लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा कि वो अपनी खुदाई के ऐलान से पहले आजाद होगा। ऐसा नहीं है कि बस जंजीरें टूटी और किसी गुमनाम जजीरे से निकले और फौरन खुदाई का दावा कर बैठे। इस तरह उसको मुसलमान तो क्या खुद उसके मुंतजिर अस्फहानी यहूदी भी मानने से इनकार कर देंगे और उससे उसका अता पता जरूर पूछेंगे। अब अगर आपके जहन में यह सवाल आ रहा हो कि हदीस में तो यही जिक्र आया है कि दज्जाल का खुरूज होगा और फिर वो अपने कारनामे दिखाएगा, उसका जवाब ये है कि दज्जाल के खुरूज से मुराद उसका अपने बारे में खुदाई का ऐलान है। खुदाई के ऐलान के बाद ही तमाम कारनामे जो अहदीस में मजकूर हैं दिखाएगा। दज्जाल की हैसियत से खुरूज और उसका दज्जाल जाहिर होना उसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। उसके बाद ही उसके जरिए उन बातों का जुहूर होगा जिसकी बिना पर वो खुद को रब साबित करना चाहता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्पलानी बुखारी शरीफ की शरह फतहुल बारी में लिखते हैं, तर्जुमा: चुनाचा वो दज्जाल कहेगा कि मैं नबी हूँ, फिर कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। लिहाजा उसको इस बात पर महमूल किया जाएगा कि जो खिलाफ आदात बातें दिखाएगा वो उसके दूसरे कौल रब के दावे के बाद होंगी। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मसाल में वो वाकया पेश किया है जो दज्जाल एक अहराबी को कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूँ तो क्या तू गवाही देगा कि मैं तेरा रब हूँ? एक और दूसरे वाकये से भी यही साबित होता है कि उसकी गंदी शख्सियत इसी वक्त वक्त असल सूरत में जाहिर होगी जब वो रब होने का दावा करेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, ये वाकया आया है, दज्जाल के पास एक नौजवान को पकड़ कर लाया जाएगा जो दज्जाल का बागी होगा। दज्जाल उसको अपनी खुदाई को तस्लीम करने की दावत देगा, लेकिन वो नौजवान इनकार कर देगा। फिर दज्जाल उसके दो टुकड़े करके जिंदा कर देगा और फिर उसको अपनी खुदाई पर कायल करेगा, लेकिन इस बार वो नौजवान और ज्यादा शिद्दत के साथ उसको झुठला देगा। नेज आसमान को बारिश का हुक्म देना, जमीन को पैदावार को हुक्म देना, गर्ज जितने भी उसके कारनामे सही अहादीस में आए हैं, इन सब से यही बात साबित है कि उसकी हकीकत उसकी खुदाई के ऐलान के बाद ही जाहिर होगी। उससे पहले उसका दज्जाल होना लोगों को मालूम नहीं होगा। यही वजह है कि यही दज्जाल जब इस मजकूरा नौजवान के पहली बार दो टुकड़े करने के बाद फिर जिंदा करके खुदाई पर कायल करेगा, तो वो नौजवान कहेगा कि अब तो मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया है कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। मस्कूरा बहस से ये बात साबित होती है कि दज्जाल का दज्जाल होना उसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। उससे पहले वो किसी मुसलह अमन के दाई और अजीम रहनुमा के तौर पर मशहूर होगा, और खुदा के ऐलान से पहले वो आज़ाद होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं होगा। अलबत्ता मुकम्मल आज़ादी और असल हैसियत खुदाई के ऐलान के बाद जाहिर होगी। उससे पहले कुछ पाबंदियां उस पर जरूर होंगी। वल्ला आलम। क्या पेंटागोन के साथ दज्जाल राब्ते में है? दज्जाल पर खासी तहकीक करने वाले इसरार आलम, अल्लाह उन पर रहम कर फरमाए, कहते हैं कि पेंटागोन यहूदी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का अबूरी अस्करी हेडक्वार्टर है। आज भी उसके सिया सफेद के मालिक यहूदी हैं। अमरीकी सदर उनके लिए खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। हर हुकूमत में एक डिक चीनी मौजूद रहता है जिसकी जबान से निकला हुआ हर फैसला पॉलिसी बन जाता है। अमेरिका में 1999 से जिस शख्स ने हुकूमत की है उसका नाम डिक चीनी है। पूरे दौरे हुकूमत में तमाम फैसले दाखिला पॉलिसी हो या खारजा, टैक्स के मसाइल हो या अफगानिस्तान पर चढ़ाई, अमेरिका में किसी चोर को बचाना हो या इराक पर हमला, सबकी मुखालफत के बावजूद भी बुश के कलम से उसी फैसले पर दस्तखत हुए जो डिक चीनी के जबान से निकले। हत्ता के बाज मरतबा FBI के डायरेक्टर ने इस्तीफे की धमकी भी दे दी, लेकिन डिक चीनी ने अपनी बात नहीं मनवाई। गोवांतानामो, बगराम और अबू गरीब वगैरह में मुजाहिदीन कैदियों के साथ शैतानी दज्जाली सलूक का हुक्म सिर्फ और सिर्फ डिक चीनी की जबान से निकला और रोशन ख्याल और आज़ादी के आलमबरदार अमरीका का कानून बन गया। बाशऊर अमरीकी अवाम तो क्या कोलन पावल और काली जादूगरनी कोंडोलीजा राइस को इस बात का इल्म 2 साल के बाद हुआ, वो भी अखबार के जरिए। दोनों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन डिक चेनी के सामने किसी ने बोलने की जरूरत नहीं की। सारा मलबा गिरा तो बुश पर, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहरा था। डिक चेनी के बारे में इसरार आलम का दावा है कि उसने दज्जाल से मुलाकात की है और दज्जाल उसको खुद हिदायत देता है। डिक चीनी तो वो है जो दज्जाल की जानिब से मंजर आम पर आया, वरना अमरीका ही क्या, बर्तानिया, स्वीडन, नॉर्वे, इस्फहान, काबुल और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रॉकफिलर, रोथशील्ड, मॉर्गन खानदान के कितने ही लोग, बुरे लोग बैठे हुए हैं जिनके लबों की हरकत दुनिया की जमहूरी और शहनशाही हुकूमतों का कानून बन जाती है। अमरीकी समेत तमाम दुनिया के हुक्मरान IMF के सदर दफ्तर के बजाय न्यूयॉर्क में उनके घरों की चौखट पर नाक रगड़ते हैं। बरतानिया और अमेरिका जैसी ताकतें जिनके कर्जे पर चल रही हैं, दुनिया के मौजूदा जमहूरी निजाम की डोरें उनके लोंडे हिलाते हैं। चुनाचा ये बात करीन कयास लगती है कि अगर दज्जाल मुतहर्रिक है तो इन यहूदी खानदानों से वो जरूर राब्ते में रहता होगा। इन खानदानों के बारे में तफसील लिखने का इरादा था, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना जानते चलिए कि अफगानिस्तान में तालिबान की पसपाई के बाद सबसे पहले आने वाला यहूदी रॉकफिलर फैमिली का एक 22 साला लड़का था जिसने इस ऑपरेशन की निगरानी की थी। ये खानदान IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी इदारा सेहत, अक्वामे मुत्तहिदा, जंगी जहाज बनाने वाली कंपनियों, जदीद असलहा, मिसाइल, खलाई तहकीकाती इदारे नासा, फिल्म साज इदारे हॉलीवुड जैसे इदारों का मालिक है। जी हाँ, मालिक। तफसील का यहाँ मौका नहीं, इसलिए दी रॉक फीलर सिंड्रोम का मुताला आपको बहुत तफसील दे देगा। ये मस्कुरा यहूदी खानदान सिर्फ बैंकार ही नहीं बल्कि कबाला का इल्म भी रखते हैं, इसलिए बास अंग्रेज मुसन्निफीन ने इनको पांच कबाला के नाम से भी याद किया है। ये सब कट्टर सहयोनी मजहबी लोग हैं। दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए राह हमवार करता रहा है। कुरान और हदीस से भी ये बात साबित है कि शयातीन अपने इंसानों में मौजूद दोस्तों की मदद करते हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इबलीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है। लोगों को फितने में डालने के लिए वो अपने लश्कर रवाना करता है। जो उसके लश्कर में सबसे ज्यादा फितना परवर होता है वो इबलीस के सबसे ज्यादा करीब होता है। मुस्लिम शरीफ। हजरत काब अहबार रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया, समंदर के किसी जजीरे में एक कौम है जो नसरानियत की अलमबरदार है। वो हर साल 1,000 जहाज तैयार करते हैं। जब जहाज तैयार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि इन जहाजों पर सवार हो जाओ, अल्लाह चाहे या ना चाहे। जब वो समंदर में उनको डालते हैं तो अल्लाह ताला तेज हवा भेजते हैं जो इन जहाजों को तबाह कर देती है। वो हर बार जहाज बनाते हैं और यही मसला होता है। जब अल्लाह ताला ये मामला मुकम्मल फरमाना चाहेंगे तो ऐसे जहाज बनाए जाएंगे कि इससे पहले समंदर में ऐसे जहाज नहीं चले होंगे। फिर ये लोग कहेंगे, इंशाल्लाह तुम इस पर सवार हो जाओ। चुनाचा ये सवार हो जाएंगे और कहेंगे कि हम इस जमीन की तरफ जा रहे हैं जहां से हमें निकाल दिया गया था। हदीस से ये बात साबित है कि अब इबलीस का मरकज समंदर में है। इबलीस का मरकज समंदर में ऐसी ही जगह होगा जहां अल्लाह का नाम और अजान की आवाज भी सुनी नहीं जाती होगी और जहां से रहकर इंसानियत के खिलाफ वो अपने मिशन आसानी से आगे बढ़ा सके। नेज हजरत काब अहबार रहमतुल्ला अलैह की मस्कुरा रिवायत को सामने रखा जाए और बरमूदा तिकोन की पुरेसरारियत और हैरत अंगेज वाकयात बल्कि नाकाबले यकीन हादसात में गौर किया जाए तो कुछ बईद नहीं कि बरमूदा तिकोन इबलीस का मरकज है और उसका परवरदा काना दज्जाल भी उसके साथ हो, या एक वहां हो और दूसरा जापान के शैतानी समंदर में हो। इबलीस का इंसानों की शक्ल में आकर अपने मानने वालों को मशवरे देना कुरान से साबित है। जंगे बदर के मौके पर इबलीस खुद मैदाने बदर तक गया था। वो बनू कनाना के सरदार सराफा बिन मालिक की शक्ल में था और अबू जहल को मुसलसल जंग के लिए बरांगे खता कर रहा था। नेज जिस तरह अल्लाह ताला के नेक बंदे औलिया अल्लाह कहलाते हैं, इसी तरह शैतान के भी औलिया होते हैं जिनको कुरान करीम ने औलियाउ शैतान कहा है। कुरान करीम में ऐसी आयात मुतादिद जगह आई हैं। सूरह नाम की आयत का तर्जुमा, बेशक शयातीन अपने दोस्तों को मशवरे देते हैं। तर्जुमा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन पर उतरा करते हैं? वो हर झूठे और बदकिरदार शख्स पर उतरते हैं जो बातें सुनने के लिए कान लगाते हैं और अक्सर झूठ बोला करते हैं। सूरह शोरा। तर्जुमा, और जो लोग रहमान के जिक्र से गफलत करते हैं हम उनके साथ शैतान लगा देते हैं जो उनका हमजोली बनकर उनके साथ लगा रहता है। बिलाशुबा वो शयातीन को सीधे रास्ते से रोकते हैं और वो यही समझ रहे होते हैं कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। सूरह अज़ुख़रुफ़। कुरान करीम की इन आयात से साबित होता है कि इबलीस और शैतान अपने इंसान दोस्तों से राब्ते में रहते हैं। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तमीमा ने अपनी किताब औलिया उर रहमान और औलिया उर शैतान में लिखा है, बाज लोगों को हवा में अर्श नजर आता है जिसके ऊपर नूर होता है और आवाज आती है कि मैं तेरा रब हूँ। तो अगर ये शख्स अल्लाह की मार्फत रखता है तो समझ जाता है कि ये शैतान है। चुनाचा वो शैतान को डांट देता है और उससे अल्लाह की पनाह चाहता है, जिसके नतीजे में ये अर्श और नूर खत्म हो जाता है। और बाज लोग ऐसे भी हैं कि जिनको शयातीन कैद से आजाद करा लेते हैं, और अगर इन लोगों पर कोई किसी हथियार से हमला करे तो वो शयातीन इस हमले से उस आदमी का दिफा करते हैं, जैसा कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हारिस दमिश्की का वाकया है, जिसने शाम में नबूवत का दावा किया था। शयातीन उसके पैरों को बेड़ियों से आजाद करा लेते हैं और असलहे की वार से उसकी हिफाजत करते हैं। अगर वो पत्थर पर हाथ पैर फेरता तो पत्थर तस्बीह पढ़ने लगता। लोगों को हवा में पियादा और घोड़ों पर सवार मर्द नजर आते। हारिस कहता कि ये फरिश्ते हैं, हालांकि वो शयातीन थे। चुनाचा जब मुसलमानों ने उसे पकड़ा और कत्ल करने के लिए एक नेजा बरदार मुजाहिद ने उसको नेजा मारा तो नेजे ने इस पर कोई असर नहीं किया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इस नेजा बरदार को कहा कि तुमने बिस्मिल्ला नहीं पढ़ी। फिर इसने बिस्मिल्ला पढ़कर नेजा मारा तो हारिस मर गया। यूरोप में कई जादूगर ऐसे गुजरे हैं जो अपने शो में हैरतअंगेज कारनामे लोगों को दिखाते रहे हैं, जिनमें डेविड कॉपरफील्ड मशहूर नाम है। उसके बारे में मोहम्मद ईसा दाऊद का दावा है कि वही के दज्जाल उसकी मदद करता है। इससे साबित हुआ कि शयातीन अपने एजेंटों के साथ जंग में शरीक होते हैं और अपने एजेंटों को हमलों से बचाते भी हैं। चुनाचा मुजाहिदीन को अपने दुश्मन पर हमला करते वक्त बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए। यूरोप का साइंसी इनकलाब, दज्जाल का किरदार। ये बात अगरचा बड़ी अजीब सी लगती है कि यूरोप के साइंसी इनकलाब के पीछे दज्जाल का हाथ है, लेकिन अगर इस बारे में किसी के पास दलाइल हो तो उसको बगैर सुने रद्द नहीं करना चाहिए। मोहम्मद ईसा दाऊद का नजरिया इस बारे में यही है। मुहक्किक ईसा दाऊद का नजरिया ये है कि इस वक्त अमरीकी और दीगर कुफरिया ताकतों के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो दरअसल दज्जाल के उन्हीं साइंसदानों की ईजाद है जिनको दज्जाल के जरिए बरमूडा त्रिकोण में अगवा कर लिया गया था। अमेरिका और दीगर कुफरिया ताकतों को वहीं से बुनियादी टेक्नोलॉजी मिलती है जिस पर बाद में ये लोग खुद भी तजुर्बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में नए इनकलाबी तसव्वुरात का इल्म पहले दज्जाल के पास था, बाद में मगरबी मुल्कों को मुंतकिल किया गया। क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई ये कहे कि बड़े बड़े मगरबी साइंसदानों को उनकी जदीद दरियाफ्तों में दज्जाल ने मदद की थी तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे। सो जरा तफसील पढ़ते चलिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन और दज्जाल। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879-1955 एक ऐसा नाम है कि अगर साइंसी तरक्की की तारीख से उसका नाम निकाल दिया जाए तो ये तरक्की याफ्ता दुनिया सदियों पीछे चली जाएगी। आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ। 3 साल की उम्र तक वो बोल नहीं सकता था। उसके बारे में मशहूर था कि वो मोटे दिमाग का लड़का है। उसका बच्चा म्यूनिख में गुजरा। माली परेशानियों के सबब उसके माँ बाप यहाँ से इटली चले गए। आइंस्टाइन 1895 में तालीम के लिए इटली से स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में वाकई यूनिवर्सिटी ETH में दाखिले का इम्तहान दिया मगर नाकाम रहा। अगले साल ETH में दाखिला मिल गया। अगस्त 1900 में इम्तहानात हुए। आइंस्टाइन की नाअहली यहाँ भी सामने थी। 5 तालिबे इल्मों में उसका नंबर चौथा था। स्विट्जरलैंड में तालीम तक उसके बारे में तमाम लिखने वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो कोई अच्छा तालिबे इल्म नहीं था। आइंस्टाइन में तब्दीलियां 1900 के बाद आनी शुरू हुई। 1905 आइंस्टाइन की कामयाबियों का साल समझा जाता है। इस साल उसने कई मकाले पेश किए। पहला मकाला रोशनी की हियत के बारे में था। दूसरा मकाला ब्राउनिन हरकत ब्राउनिन मोशन का रियाजी मॉडल था। तीसरा मकाला उसकी मशहूर मसावात ई इज इक्वल टू एम सी टू था, जिसमें मादा और तवानाई का आपस में तब्दील होना मुमकिन बताया गया था। हाल ही मैंने एक महक्किक की ये बात तहकीक में सामने आई है कि ये मसावात आइंस्टाइन से कई साल पहले एक अतालवी ने शाया की थी। चौथा मकाला खुसूसी इजाफियत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था। इससे वक्त और फजा को अलग अलग तसव्वुर करने के बजाय वक्त और फजा या जमानो मकान का नजरिया सामने आया। 1911 में उसने अमूमी नजरिया इजाफियत पर अपना मकाला शाया किया। मोहम्मद ईसा दाऊद बहुत जोर देकर इस बात को साबित करते रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में ही दज्जाल के साथ उसका राबता हुआ और उसी ने उसको नजरिया इजाफियत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इल्म दिया। मोहम्मद ईसा दाऊद के नजरिए पर दो एतराज हो सकते हैं। नंबर एक, क्या इस्लामी तालीमात की रोशनी में यह बात मुमकिन है कि दज्जाल अपने खुरूज से पहले इंसानों से राबता कर सकता था? आइंस्टाइन में ऐसी कौन सी खास बात थी जिससे दज्जाल खुश हुआ और आइंस्टाइन को हीरो बनवाया? पहले एतराज का जवाब पीछे बहस में गुजर चुका है। चुनाचा मोहम्मद ईसा दाऊद की अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो राय है उसमें शरण तस्लीम करने में कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता दूसरा एतराज बाकी है कि आइंस्टाइन में ऐसी कौन सी खास बात थी कि जिससे खुश होकर दज्जाल ने उसको इतने अहम नजरिए से मालामाल कर दिया। उसका जवाब जानने के लिए हमें आइंस्टाइन की जिंदगी और उसके नजरियात का मुताला करना होगा। आइंस्टाइन अगरचा खुद कट्टर यहूदी था, लेकिन दूसरे ईसाइयों और मुसलमानों को वलादीनियत और अलहाद की तरफ दावत देता था। ज़ाती एतबार से उसमें वो तमाम बुराइयां मौजूद थीं जो इबलीस या दज्जाल को खुश करने के लिए काफी थीं। बीवी के साथ उसका रवैया जालमाना था। चुनाचा जब वो 1914 में अपनी पहली बीवी मेलवा मार्क के हमरा बर्लन जर्मन चला गया तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हो गए। आइंस्टाइन बीवी को सिर्फ इस सूरत में अपने साथ रखने पर राजी था कि अगर वो ये शरायत पूरी करे। नंबर एक, तुम ये यकीनी बनाओगी कि मेरे कपड़े और बिस्तर ठीक ठाक हों। नंबर दो, मुझे अपने कमरे में 3 वक्त का खाना पहुंचाओगी। नंबर तीन, मेरा सोने और पढ़ने का कमरा साफ सुथरा रखोगी, मेरी पढ़ने वाली मेज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नंबर चार, मुझसे तुम्हारे तमाम जाती ताल्लुकात खत्म रहेंगे सिवाय लोगों को दिखाने के लिए। जब मैं मुखातिब हूँ तो फौरन जवाब दोगी, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ नहीं करोगी। बर्लिन पहुंचकर आइंस्टाइन की शनासाई अपनी चचाजात बहन एल्सा से हो गई, लेकिन आइंस्टाइन इस चशोपंज में था कि वह एल्सा से शादी करे या उसकी जवां साल बेटी से। जहां तक उसके नजरियात का ताल्लुक है तो वो कट्टर सेहूनी बल्कि सेहूनियत का दाई और मुबल्लिग था। वो फलस्तीन में इसराइल के क्याम का पुरजोश शामिल था। 1921 में चिम वाइजमैन पहला इसराइली सदर बना के साथ अमेरिका का दौरा किया और सेहूनियत के लिए चंदा जमा करने के लिए मुतअद्दिद शहरों में तकरीरें की, यहाँ तक कि आइंस्टाइन को 1952 में इसराइली सदारत की पेशकश हुई जो उसने कबूल नहीं की। एटम बम बनाने की तजवीज अमेरिका को उसी ने दी। 1939 में उसने अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को खत लिखा जिसमें एटम बम बनाने की तरकीब दी। दूसरी जंग अजीम में ये बनफसे नफीस शरीक हुआ और एक असलहा माहिर के तौर पर अपनी खिदमात अमरीकी बहरिया को पेश की। आइंस्टाइन का खुदा। आइंस्टाइन के अकवाल में गॉड खुदा का जिक्र मिलता है, लेकिन आप ये ना समझे कि आइंस्टाइन का खुदा वही खुदा था जिसको मजहबी खुदा माना जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन पर लिखने वाले तकरीबन तमाम हजरात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंस्टाइन का खुदा मजहबी नुक्ते नजर से मुख्तलिफ होने का ख्याल जाहिर किया गया है। आखिर आइंस्टाइन का खुदा मजहबी खुदा नहीं था तो फिर कौन था? यही चीज गौर करने वाली है। کہ وہ اکثر کس خدا کا ذکر کرتا تھا۔ اگرچہ اب بعض مبصرین کی رائے یہ ہے کہ آئنسٹائن کے خدا سے مراد قدرت، نیچر ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آئنسٹائن دجال کو اپنا خدا مانتا ہو۔ اس بات پر آئنسٹائن کے مقالات میں ایک اور اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے نظریات کے بارے میں میرا نظریہ کے بجائے ہمارا نظریہ کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ وہ کائنات کی متحدہ قوت کا راز پتہ لگانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ دجال کا کسی کو کوئی نیا نظریہ دینا کوئی اچنبھے کی بات نہیں لگتی، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابلیس اپنے انسان دوستوں کے پاس آتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے اور کام کے بارے میں ہدایات بھی دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرہ اور بنی آدم کے خلاف آخری امید ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہوں۔ آئنسٹائن جیسے لوگوں پر شیاطین آ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو براہ راست شیطان بزرگ ابلیس کی پوجا کرتا ہے۔ یہ فرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور ان کے اچھے خاصے پیروکار بھی ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شمار اس فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائز بھی اس فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ امریکی فلمی دنیا، ہالی ووڈ کے مشہور اداکار اور اداکاراؤں کا مذہب بھی شیطان کو خوش کرنا ہے۔ بھارتی اداکار امیتابھ بچن، مصر کا عمر شریف، مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ، بدنام زمانہ امریکی گوئے مائیکل جیکسن بھی شیطان کے پجاری ہیں۔ مائیکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں، درحقیقت ان لوگوں پر شیاطین آ جاتے ہیں۔ کیا امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے؟ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ برمودا تکون میں جو قوت بھی ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ ہے اور موجودہ ٹیکنالوجی سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کی بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی برمودا تکون کے خفیہ قوت کے پاس بہت پہلے رہی ہوگی۔ تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کو اصل موجود موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ قوت ہے؟ یقیناً یہ بات آپ کو مضحکہ خیز لگے گی، لیکن ذرا مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجئے۔ نمبر ایک، 30 جون 1908 روس میں سائبیریا کے انتہائی دور دراز علاقے ٹنگسکا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسے واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا، گھڑیاں 7:15 دکھا رہی تھیں۔ 40 میگا ٹن کا کوئی نامعلوم مادہ سطح زمین سے صرف 8 کلومیٹر اوپر فضا میں پھٹا، جس نے فوراً 1000 کلومیٹر کا علاقہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ جنگل میں آگ لگ گئی اور ہفتوں لگی رہی۔ چنانچہ 2150 مربع کلومیٹر جنگل جل کر راکھ ہو گیا۔ 20 سال تک یہ علاقہ بنجر رہا، بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس دھماکے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ دھماکہ 40 میگا ٹن 40 لاکھ ٹن کا تھا، جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر 1945 میں گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے میں 2000 گنا زیادہ تھا۔ وہ عینی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دور اس منظر کا مشاہدہ کیا، ان کا بیان ہے، اس دن موسم صاف تھا، کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔ انہوں نے فضا میں ایک چمکدار کوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دھماکہ ہوا۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد دھوئیں اور شعلے کا ایک بڑا بادل وہاں سے اٹھا۔ ابتدا میں گرم لہر آئی اور پھر سخت گرم ہوا چلی۔ دھماکے کی شدت سے جھوپڑیاں ڈھہ گئیں، انسان اور گھاس پھوس جلنے لگے اور جلد ایسے ہو گئے جیسے کھرنڈ۔ ٹنگسٹا سے 40 میل دور وینا وارا نامی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ वहां लोग धमाके की शिद्दत से उछलकर दूर जा गिरे। वहां मकानात की खिड़कियां टूट गईं और छतें जमीन पर आ गिरी। नेज धमाके की जगह से मीलों दूर कंसक नामी कस्बे में इन झटकों की शिद्दत की वजह से चलती ट्रेन को हंगामी तौर पर रोकना पड़ा। धमाके की आवाज कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के बहरा हो जाने की इत्तला भी बाद में मौसूल हुई। धमाके के बाद खुम्बी मशरूम की तरह धुएं के बादल उठे और सियाह बारिश हुई। इस वाकये के बाद इस इलाके और वस्त एशिया में आसमान में खूब चमकदार बादल होते थे। यहाँ तक कि लंदन में भी रातें बगैर चांद के इतनी रोशन होती थी कि कोई भी इसकी रोशनी में मुताला कर सकता था। पार्ट 4 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।